उस दिन कैलेंडर पर तारीख थी 6 अगस्त 1945। जापान के हिरोशिमा का आसमान साफ था, कोई बादल नहीं। हिरोशिमा के लोगों के लिए ये हर सुबह जैसी ही थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों को निपटा रहे थे, इस बात से अनजान कि वहां सब कुछ चंद पलों में ही खत्म होने वाला है। इतिहास तो लिखा जाना अभी बाकी था, लेकिन उसकी इबारत तैयार थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन अत्यंत गोपनीय अभियान में जापान पर परमाणु बम गिराए जाने को मंजूरी दे चुके थे। रात में ही 2:45 पर एनोला गे ने उड़ान भरी। दिशा थी पश्चिम की ओर, लक्ष्य जापान। हिरोशिमा में भयंकर तबाही मचाने वाले इस परमाणु बम को पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। B-29 में जब लिटिल बॉय को लादा गया तो ये सक्रिय बम नहीं था, उसमें बारूद भरा जाना अभी भी बाकी था, बम का सर्किट पूरा नहीं था। एनोला गे विमान के चालक दल में शामिल थे 12 लोग। इनमें थे पॉल डब्ल्यू टिब्बेट्स, वॉन किर्क और शस्त्र अधिकारी मॉरिस जेप्सन। मॉरिस जेप्सन ही वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में आखिरी बार लिटिल बॉय आया था। उन्होंने अपने चालक सहयोगी डीक पार्सन के साथ मिलकर 4 बड़े बैग बारूद इस बम में रख दिए। इसके बाद जेप्सन ने लिटिल बॉय में प्लग लगाकर इसे जिंदा बम में तब्दील कर दिया।
I had to handle, touch, lean on the little boy bomb. So the last person to have his hands on that weapon was me.
उस समय हिरोशिमा में वक्त था सुबह के 8:15। एनोला गे की कमान पायलट कर्नल पॉल डब्ल्यू टिब्बेट्स के हाथ में थी।
It was something that the imagination really couldn't comprehend.
ये कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या कहूँ, बम गिराने के बाद चंद सेकंड के लिए मैंने पलट कर उसे देखा और आगे चल दिया। मैंने धुएं के बादल और तेजी से फैलती हुई आग देखी। धुएं के गुब्बार ने बड़ी तेजी से शहर को अपनी चपेट में ले लिया।
इस तरह चंद मिनटों में ही हिरोशिमा में सब कुछ निर्जन हो चुका था, उजाड़ और वीरान। अमरीकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने परमाणु बम गिराए जाने की घोषणा की।
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy.
अब से कुछ देर पहले एक अमरीकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। ये बम 20,000 TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस बम के साथ ही हमें हथियारों की श्रृंखला में एक नया क्रांतिकारी विध्वंसक हथियार मिल गया है जो हमारी सेनाओं को मजबूती देगा। इस समय इस बम का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही इससे भी ज्यादा खतरनाक बमों पर काम किया जा रहा है। ये परमाणु बम है जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति है।
लिटिल बॉय जब हिरोशिमा के वायुमंडल में फटा तो 13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भारी तबाही फैल गई। शहर की 60% से भी अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी थी। स्कूल की एक छात्रा जिंको क्लाइन हिरोशिमा रेलवे स्टेशन पर अपने कुछ दोस्तों के साथ थी, उस जगह के बिल्कुल पास जहां ये बम गिराया गया था। बीबीसी ने सुनी उनकी आपबीती।
I had a tremendous explosion. I must have been unconscious for a while. When I came to myself, painful screams for help from everywhere came into my ears.
मैंने एक जोर का धमाका सुना। कुछ समय के लिए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो देखा हर तरफ से मदद के लिए चीखती दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूं और मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। इसी समय हिरोशिमा स्टेशन भरभरा कर गिर पड़ा। मैं भागने लगी। मुझे लगा कि आग का गोला मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो मेरी एक सहेली की आवाज थी। वो मलबे में दबी थी। मैंने उसे खींचकर बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन तभी वो आग की चपेट में आ गई। उसके हाथ ने मेरे हाथ को भींच रखा था। भरी आंखों के साथ मैंने किसी तरह से अपना हाथ खींचा और फिर भागने लगी। पीछे उसकी चीखती हुई आवाज़ धीरे धीरे आग और धमाकों के शोर में गुम हो गई। भागते भागते मैं एक पहाड़ी पर पहुंची जहां पर तमाम घायल जले हुए लोग कराह रहे थे। मैं उनके और लाशों के ढेर के बीच कहीं पड़ी थी। शाम को करीब 5 बजे मैं अपने पिता और माँ के पास किसी तरह पहुंची। रास्ते भर में मुझे जले हुए शव नदी में तैरती हुई लाशें दिखी। शहर से बाहर रहने वाले मेरे पिता तो बच गए, लेकिन मेरी माँ बुरी तरह घायल थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पूरे शरीर पर बैंगनी चकत्ते पड़ गए। मेरे सारे बाल गिर चुके थे, चेहरा विकृत हो चुका था।
6 अगस्त 1945 को जो लोग हिरोशिमा में थे वो या तो मारे जा चुके थे और जो बच गए उन पर रेडियो विकिरण का असर हुआ। ये एक ऐसा असर था जो कि आने वाली पीढ़ियों पर भी दिखाई देने वाला था। कैलेंडर में एक बार फिर से तारीख बदली और इस बार वो तारीख थी 9 अगस्त 1945, जगह नागासाकी। अमेरिका का बम वर्षक B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉक्स कार पर एक बम लदा हुआ था। यह बम किसी भीमकाय तरबूज जैसा था। वजन था 4050 किलोग्राम। बम का नाम विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैटमैन रखा गया था। इस दूसरे अणुबम का निशाना था औद्योगिक नगर कोकुरा। यहां जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां थी। सुबह 9:50 पर नीचे कोकुरा नजर आने लगा, लेकिन नगर के ऊपर बादलों का डेरा था। B-29 का ईंधन खतरनाक तरीके से घटता जा रहा था। विमान में सिर्फ इतना ही तेल था कि वो वापस पहुंच सके। ग्रुप कैप्टन लियोनाल्ड चेशर ने BBC को बताया था।
When we got to the primary target, it was partially under cloud.
हमने उड़ान भरी। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर बादल थे। तभी हमें इस जगह को छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े जो कि नागासाकी था।
कुछ ही पलों में भीमकाय बम तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद ये बम फटा। घड़ी में वक्त था 11:02। आग का भीमकाय गोला मशरूम की शक्ल में। गोले का आकार लगातार बढ़ने लगा और तेजी से सारे शहर को निगलने लगा। आसपास के दायरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति ये जान ही नहीं पाया कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि इससे पहले कि ये आभास होता वो पहले ही मर चुके थे। शहर के बाहर कुछ ब्रितानी युद्ध बंदी खदानों में काम कर रहे थे। उनमें से एक ने BBC को बताया,
Very, very quiet. And we just stood there and looked. Dead people lying around you. You know, we knew that something.
हर तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थीं। हमें पता चल चुका था कि कुछ तो असाधारण घटा है। लोगों के चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था।
नागासाकी शहर के पहाड़ों से घिरे होने के कारण केवल 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही तबाही फैल पाई। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही तादाद में लोग घायल हुए थे। इसी रात अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा की,
जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे।
दो परमाणु हमलों और 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ द्वारा जापान के खिलाफ मोर्चा खोल देने पर जापान के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। जापान के युद्ध मंत्री और दूसरे सेना के अधिकारी आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बोरोन कांतारो सुजुकी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इसके बाद जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से दूसरे विश्व युद्ध का समापन हुआ जापान पर परमाणु बम हमले के साथ। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था। अमरीका काफी पहले से परमाणु बम की योजना पर काम कर रहा था। इतिहास में इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्व युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पकड़ रखने वाले एसोसिएट प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे,
मैनहट्टन प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट था जिसके तहत एटम बम बनाने की तैयारी की जा रही थी। जर्मनी के कुछ वैज्ञानिक अमेरिका पहुंच चुके थे जिनमें अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे मशहूर फिजिसिस्ट भी शामिल थे और उसके अलावा ओपेनहाइमर और कुछ और साइंटिस्ट अमेरिका में थे। इन लोगों ने एटॉमिक फिजन पे काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ एक बात और बताना जरूरी होगा कि अमेरिका एक अकेला देश नहीं था जिसमें एटॉमिक फिजन पे काम हो रहा था। हेवी वाटर एक्सपेरिमेंट्स और एटॉमिक फिजन पे काम जर्मन्स ने भी करना शुरू कर दिया था। उनके सीक्रेट वेपन्स प्रोग्राम में एक प्रोग्राम ये भी शामिल था कि वो लोग नॉर्वे में और स्कैंडिनेवियन मुल्कों में हेवी वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और वो लोग भी कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके के विध्वंसकारी हथियार जो है बनाए जाएं।
इसी मैनहट्टन योजना के तहत 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने प्लूटोनियम के इस्तेमाल से बने बम का न्यू मैक्सिको में परीक्षण किया और इसके 3 हफ्ते बाद ही अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। लेकिन इस बम में प्लूटोनियम नहीं बल्कि यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से मैंने पूछा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए उनमें क्या था।
एटम बम गिराया था इन्होंने हिरोशिमा में जिसमें कि एनरिच्ड यूरेनियम यूज किया गया था और ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है इससे ये पूरा बम पावर्ड था। और नागासाकी पे बम गिराया गया उसमें जो एटॉमिक एलिमेंट यूज हुआ था वो प्लूटोनियम यूज हुआ था क्योंकि दो ही एलिमेंट हैं जो कि फिजन करते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम तो नेचुरली मिलता है और प्लूटोनियम जो है वो नेचुरली नहीं मिलता है, वो मैन मेड एलिमेंट है। एटम बॉम्ब जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक फिजन और एक फ्यूजन। जो फिजन का रूट है वो यूरेनियम या प्लूटोनियम से लिया जाता है और दूसरा रूट होता है फ्यूजन का जिसमें कि हाइड्रोजन या लिथियम यूज किया जाए।
लेकिन सवाल ये है कि क्या दूसरे विश्व युद्ध का समापन जापान पर परमाणु बम गिराकर ही हो सकता था? उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, यही सवाल मैंने पूछा प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे से।
1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था। मई के महीने में जर्मनी की हार हो गई और उसके बाद जापान भी हार की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जापान को अगर ऑक्यूपाई करना था जिस तरह से जर्मनी को ऑक्यूपाई किया गया सोवियत यूनियन द्वारा, एलाइड फोर्सेस द्वारा, जहां रेजिस्टेंस बहुत कम मिला, जापान में स्थिति विपरीत थी। जापानीज जो आर्मी थी वो आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थी। जो एलाइड फोर्सेस थी उन लोगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो एक तो अपना नुकसान कम करने के लिए, अपनी तरफ से मौतें कम करने के लिए 2 एटम बम डाले गए जिससे जापान ने घुटने टेक दिए। और दूसरा कारण ये बताया जाता है अमेरिका दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि उसके पास इस किस्म के हथियार हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे विनाश कर सकते हैं। ये हथियार अमेरिका अपने दुश्मनों पे इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा पैगाम अमेरिका दुनिया को देना चाहता था जिससे अमेरिका के भविष्य में दुश्मन बनने वाले देश हो सकते थे वो अमेरिका से खौफजदा रहें और डरें।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम का नतीजा ये हुआ कि आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया में परमाणु हथियार हासिल करने की होड़ बढ़ गई, साथ ही दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा भी।